श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका यूरोपीय इतिहास के इस अध्याय में जिसका शीर्षक है इटली में फासिज्म। आइए शुरू करते हैं फासिज्म को। हम यह देख चुके हैं कि एकीकरण के बाद ही इटली अपने को अपूर्ण समझता था। इटली में प्रगति सीमित थी, प्रजातंत्र भ्रष्ट और लड़खड़ा रहा था। ऐसी स्थिति में मुसोलिनी ने इटली की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को आक्रामक होने का आह्वान किया और इटली एक ज्वार पर सवार अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ चला। इटली में फासिज्म का प्रादुर्भाव का यह प्रमुख कारण था वर्तमान में असंतोष, क्षोभ और एक प्रकार के निराशा। यह असंतोष सबसे अमूर्त था अपूर्णता के विरुद्ध। 1870 के बाद भी इटली को एड्रियाटिक सागर तट पर स्थित कुछ विशेष क्षेत्रों, विशेषकर फ्यूमे नहीं मिल सके थे। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी का साथ छोड़कर मित्र राष्ट्रों की ओर लड़ना भी उसे बेकार हो गया। इटली का कहना था कि इंग्लैंड और फ्रांस को तो कई तरह के पुरस्कार मिले, लेकिन उसे क्या मिला। उसे लगा जीत तो हुई लेकिन शांति लुप्त हो गई। इस दिशा में सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी। इसके विपरीत जब दानंद जियो ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ फ्यूसे पर जबरदस्ती कब्जा किया तो सरकार ने यूगोस्लोवाकिया से संधि कर उसे फ्यूसे से बाहर कर दिया। राष्ट्रवादियों को बहुत क्षोभ था। अल्बानिया में इटली का प्रभाव कम हो रहा था। अफ्रीका और भूमध्य सागर में इटली की प्रमुखता स्थापित नहीं हो पा रही थी। जनता सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार समझने लगी। इस भावनात्मक असंतोष के पीछे आर्थिक विपन्नता भी थी। दक्षिणी इटली शुरू से ही गरीब रहा है। एकीकरण के बाद स्थिति बदली नहीं थी। सिसली में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। उत्तर में औद्योगिक विकास हुआ था, लेकिन वहाँ भी मजदूर असंतुष्ट थे। युद्ध की समाप्ति पर लौटे सैनिक सर्वहारा बन गए थे और सरकार की आक्रमणीयता पर नाराज थे। इटली की स्थिति साम्यवाद से प्रसार के अनुकूल थी और उनका प्रभाव बढ़ रहा था। युद्ध के बाद हुए चुनाव में साम्यवादियों को पहले से ही 2 गुनी सीटें मिली थी। रूस की क्रांति की सफलता का प्रेरणा काम कर रही थी। इटली में सत्ताधारी इससे आशंकित भी थे। चर्च पर जनता का प्रभाव था और समाजवाद का कट्टर विरोधी था। सामंत और उद्योगपति भी गरीबों और मजदूरों की बढ़ती ताकत कुचल देना चाहते थे। जो जो मजदूर संगठित होते जा रहे थे त्यों त्यों उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी बढ़ रहा था। इटली में प्रजातंत्र असफल हो गया था। जर्मनी और इटली की एकीकरण एक ही साथ हुआ था। बिस्मार्क ने प्रजातंत्र को मजबूत नहीं किया था, लेकिन बदले में एक स्थिर सरकार, प्रगति और प्रतिष्ठा कायम की थी। इटली में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित तो हुआ, लेकिन दलीय व्यवस्था परंपरा के विरुद्ध थी। कोई भी राजनीतिक दल बहुत दिनों तक स्पष्ट बहुमत बनाए नहीं पाता था। प्रायः दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी दल मिलजुल कर सरकारें चलाते थे। 50 वर्षों में ही स्वस्थ संसदीय प्रणाली नहीं विकसित हो पाई। राजनीतिक नेता अयोग्य ही नहीं, भ्रष्ट भी थे। प्रजातंत्र इटली में बदनाम हो चला था। कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में अमेरिकी पत्रकार जान विहिटेकर ने लिखा है कि इटली में तर्क और चाकू ज़्यादा कारगर थी। इटली के उपनिवेश भी सांत्वना देने में असमर्थ थे। सामान्य असंतोष के दौरान स्थितियों में तत्काल परिवर्तन, रोजगार और राष्ट्रीय सम्मान की भूखी जनता को एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो तत्काल कुछ करे। चर्च, सामंतों और उद्योगपतियों को भी समाजवाद विरोधी एक शक्तिशाली उपकरण चाहिए था। मुसोलिनी उसके लिए वरदान सा था। मुसोलिनी का पूरा नाम बेनितो मुसोलिनी था। उसके पिता लोहार और माँ शिक्षिका थी। अब वह अपनी माँ के प्रभाव में शिक्षक बन गया, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था और एक मामूली शिक्षक की जिंदगी से असंतुष्ट था। वह अध्ययन के लिए स्विट्जरलैंड चला गया, जहां वह समाजवादी विचारों के प्रभाव में आया। जनेवा और लोसान में उसने अपनी संगठन शक्ति का भी परिचय दिया। लौटकर इटली में आंदोलनों में भाग लेता रहा, साथ ही अध्यापन भी करता रहा। उसे सजा मिली और अंत में वह समाजवादी दल के प्रमुख पत्र आवंती का संपादक बन बैठा। समाजवादी लोग प्रथम महायुद्ध के विरुद्ध थे क्योंकि उसे पूंजीवादियों की आपसी झगड़ा समझा जा रहा था। मुसोलिनी का शुरू से भी यही मत था, लेकिन बाद में उसने युद्ध में एक अवसर देखा। इटली के युद्ध में शामिल होने का हिमायती बन गया। उसे समाजवादी दल से हटना पड़ा और औद्योगिक नगर मिलान में एक नया पत्र इटली की जनता निकालने लगा। युद्ध के बाद की स्थिति विचार करने के लिए उसने पुराने सैनिकों को निमंत्रित किया और कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जो बाद में फासिस्ट दल के नाम से जाना जाता है। लकड़ी के बंधे बोझ को अपना निशाना और एकता का प्रतीक मानकर मुसोलिनी ने उग्रवादियों के साथ परिवर्तन का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जो जो आर्थिक कठिनाई बढ़ती गई और सरकार असफल होती गई, त्यों त्यों उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। उसने अपने दल को षड्यंत्रकारी आधार पर संगठित किया। अपने पत्रों और भाषणों के माध्यम से वह आग उगलता था और उसने और उसके युवा अनुयायी विरोधियों पर सही गलत के माध्यम से हर सही गलत के ढंग से प्रहार करते थे। कम्युनिस्टों से भयभीत सरकार स्वयं चुपके चुपके मुसोलिनी की मदद करती थी। 1961 के चुनाव में उसे 35 सीटें मिली। विभिन्न कारणों से असंतुष्ट लोगों का सहयोग मुसोलिनी को मिलता रहा और वह साम्यवाद के विरुद्ध एक सशक्त मोर्चे के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसे मालिकों से बराबर सहायता मिलती रही। उसके दल की शाखाएँ पूरे देश में खुल गईं। उसने अब खुलेआम सरकार में हिस्सेदारी की मांग की। नेपल्स में अपने अनुयायियों की सभा में उसने घोषणा की, या तो हमें सरकार में शामिल किया जाए या हम रोम में सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इटली की ढुलमुल सरकार इस चेतावनी से डर गई और उन्हें सहभागी बनाने को तैयार हो गई, लेकिन मुसोलिनी ने इनकार कर दिया और पार्टी को रोम चलो का नारा दिया। प्रधानमंत्री फाख्ता ने आपातकाल की घोषणा कर सख्ती से निपटाना चाहा, लेकिन शासक इमैनुएल गृह युद्ध की संभावना से डर गया। उसने मुसोलिनी को ही सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। इस तरह 1922 में वह असाधारण अधिकारों सहित इटली का प्रधानमंत्री बन गया। एक बार जो अधिकार मिल गए उन्हें वापस करने का प्रश्न ही नहीं था। उसमें वृद्धि होती रही और वह एकमात्र नेता कहा जाने लगा। आंतरिक नीति, हमारा अगला शीर्षक है आंतरिक नीति। मुसोलिनी ने पहले सरकार और देश का फासिस्टीकरण किया। सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाजवाद और कम्युनिस्ट नेताओं की हत्या तक करवाई गई। पार्लियामेंट एक मुहर बन गई और राजा नाम मात्र का सलाहकार। विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो, ट्रस्ट ओबे फाइट, इन नारों के साथ फासिस्ट दल सारे देश और तंत्र पर हावी हो गया। स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। विरोधियों के दमन के लिए ओवरा नामक संस्था थी जो किसी के साथ कुछ भी कर सकती थी। ट्रेड यूनियनें भंग कर दी गई। वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग का नारा देकर मजदूरों को जबरदस्ती शांत कर दिया गया। कृषि उद्योग, ऋण, बीमा व्यवसाय तथा अन्य पेशों के क्षेत्र में राष्ट्रीय आयोग बना दिए गए। कुल मिलाकर 22 आयोगों का गठन हुआ जिसमें प्रत्येक का अध्यक्ष मुसोलिनी था और प्रशासन फासिस्ट दल के महत्वपूर्ण लोगों के हाथ में। आर्थिक जीवन में सिंडिकेट और निगम का एक नया प्रयोग शुरू हुआ जो योग्यता और प्रोत्साहन के नाम पर विशिष्टों को बढ़ावा था। कुछ दिनों के लिए तो लगा कि इटली में चमत्कार हो गया। फासिज्म जीवन में किसी अंग को अछूता नहीं छोड़ना चाहता था। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई। लड़कों को उम्र के हिसाब से दलों में बांटा गया और अनुशासन, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सिद्धांत को मिलाकर उनकी पूरी लामबंदी की गई। मुसोलिनी नारी स्वतंत्रता का विरोधी था और उन्हें घर के अंदर पत्नी और माँ बनने तक ही सीमित रखना चाहता था। वह जानता था कि इस कैथोलिक बहुल देश में पोप से अच्छे संबंध जरूरी हैं। 1871 से ही पोप इटली को मान्यता देने से इनकार करता रहा और अपने महलों में द्वीप सा जीवन जीता रहा। मुसोलिनी ने पोप पियूस 11वें से वार्ता शुरू की और 1929 में एक समझौता हो गया जिसके द्वारा पोप के महलों को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। उसे अपना सिक्का और डाक टिकट चलाने तथा राजदूत नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। पिछले वर्षों के लिए उसे मुआवजा दिया गया। पिछले 60 वर्षों का द्वंद्व समाप्त हो गया और पोप ने कहा इटली को ईश्वर और ईश्वर को इटली वापस मिल गए। इस प्रकार धर्म और राष्ट्रीयता का सहारा लेकर मुसोलिनी ने इटली को एक नई संस्कृति से लैस करना चाहा। अपने को आर्यों और गौरवशाली परंपराओं से जोड़कर मारिनेती, रोसिनी और तांजिता जैसे फासिस्ट लेखक दर्शन को बल देने लगे। युद्ध को गौरवान्वित किया जाने लगा। फासिस्ट आक्रमण और उत्कृष्ट राष्ट्रवादिता का दर्शक बन गया। मुसोलिनी एक भूतपूर्व समाजवादी था। उसने विभिन्न विचारों का अध्ययन किया था और उसका मूल आधार वैज्ञानिक समाजवाद का विकल्प प्रस्तुत करना था। वह वर्ग संघर्ष के स्थान पर सहयोग की बात करता था, जो मूलतः सत्ताधारी वर्ग के हित में हुए मेहनतकश वर्ग को भ्रम में डाल सकता था। सर्वहार के अधिनायकत्व की संभावना से आतंकित लोगों को अपने आर्थिक विचारों और प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया और मध्यम वर्ग का ही अधिनायकत्व कायम रहेगा। उसके विचार राष्ट्रीय सिंडिकलिज्म के नाम से जाना जाते हैं। उसने मालिकों और मजदूरों के सहयोग के लिए एक मंत्री के नियंत्रण की तरह सिंडिकेटों के संगठन किया, जिसमें 6 मजदूरों के और एक वकील डॉक्टर जैसे पेशावर लोगों के थे। मजदूरों के हड़ताल करने का या यूनियन बनाने का अधिकार तो छीन लिया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए छुट्टी, बीमा, संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इस प्रकार उसने समाजवाद को रोकने का वही प्रबंध किया जिसकी शुरुआत बिस्मार्क ने जर्मनी में की थी। विभिन्न आर्थिक इकाइयों के लिए अलग अलग नियम संगठित किए गए जिन पर फासिस्ट दल का नियंत्रण था। इस प्रकार मुसोलिनी की आंतरिक नीति का लक्ष्य था जीवन के विभिन्न अंगों पर फासिस्ट दल का नियंत्रण, एक पिरामिड जैसी व्यवस्था की कठोर जकड़ जिसका शिखर नेता अर्थात वह स्वयं हो। राष्ट्रीय अहंकार और गौरव के स्थान पर पूरे देश की लामबंदी, उसके प्रतिस्पर्धी विकल्पों समाजवादियों और साम्यवादियों का निर्मम दमन, तात्कालिक व्यापक प्रगति आदि, और इनमें उसे निश्चय ही प्रारंभिक सफलता मिली। पर राष्ट्र नीति, अगला शीर्षक है पर राष्ट्र नीति। इटली की संपूर्णता और सम्मान सारे इटली की भूख थी। मुसोलिनी ने स्पष्ट कहा था कि हमें भूमि की भूख है क्योंकि हम संख्या में बहुत हैं, वैसे भी बने रहना चाहते हैं। इसे ही शांत करने का उसने सीधा प्रयास किया। कैथरीन डफ ने मुसोलिनी की विदेश नीति के संबंध में लिखा है, भूमध्य सागर इटली का साम्राज्य होने के स्थान पर उसके लिए जेल बन गया। कार्सिका, माल्टा, न्यूनिस और साइप्रस इस जेलों की सलाखें थीं और स्वेज तथा जिब्राल्टर इसके पहरेदार। इस जेल को तोड़कर अटलांटिक और भारतीय महासागरों तक पहुँचे बिना इटली की अपनी स्वतंत्रता को अधूरा समझता था। इसलिए विस्तार उसकी विदेश नीति की प्रेरक तत्व थी। यूनान और अल्बानिया की सीमा निर्धारण के समय हुए दंगों में 3 इटालियन भी मारे गए। मुसोलिनी ने यूनान को चेतावनी दी और राष्ट्रसंघ द्वारा मुआवजा मांगा। न मिलने पर उसने कार्फू द्वीप पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रसंघ द्वारा मुआवजा दिलाए जाने पर ही उसे छोड़ा। इससे इटली की इज्जत बढ़ी। फ्यूमे पर इटली का ही प्रभुत्व स्थापित हो गया। फ्रांस में इटली के मजदूरों की हालत दयनीय थी। नीस और सवाय पर फ्रांस के कब्जे की याद दिलाकर उसने उन्हें धमकाया, मजदूरों की हालत तो सुधरी। फ्रांस भी उससे आतंकित रहने लगा। उसके साम्यवाद विरोधी स्वर के कारण फ्रांस और इंग्लैंड उसका समर्थन करने लगे। जब हिटलर ने पहली बार ऑस्ट्रिया में हस्तक्षेप करना चाहा तो उसने विरोध करके योजना असफल कर दी। इटालियन राष्ट्रवाद आक्रामक हो चला। मारिया लुकार्लो कहता था कि इटलीवासी हमेशा युद्धरत रहे हैं और रहेंगे। 1896 में अबिनिसिया द्वारा अडोवा में हुई पराजय इटालियन जनमानस के राष्ट्रीय अपमान की स्मृति बन गई थी। उस पराजय का बदला एक आह्वान बन सकता था। मुसोलिनी ने यही किया। अबिसिनिया का शासक हैले सिलाई अयोग्य था। उसकी सीमा सोमालीलैंड का क्षेत्र इटली के कब्जे में था। सीमा विवाद खड़ा करना आसान होता है। सीमा पर झड़पें हुई, मुसोलिनी ने वहां सेना भेज दी, राष्ट्रसंघ में हायो तौबा मची। लेकिन इटली का तर्क था इथियोपिया को इंग्लैंड अपने पौंड की ताकत से लेना चाहता था और हम खून देकर। जब आर्थिक बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ तो मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ को ठुकरा दिया और अबिसिनिया को हड़प लिया। मुसोलिनी को हिटलर का खुला समर्थन मिला था और दोनों की निकटता की पृष्ठभूमि बन गई थी। हिटलर के रोम आने पर उसका भव्य स्वागत हुआ और उसकी निकटता बढ़ गई। हिटलर ने फिर ऑस्ट्रिया में हस्तक्षेप किया तो मुसोलिनी ने विरोध नहीं किया। इस प्रकार बर्लिन और रोम एक साथ हो गए और बाद में टोक्यो में शामिल होने पर बर्लिन और रोम की टोक्यो की धुनें बनी। स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांकोन की मुसोलिनी ने खुलकर सहायता की और एक तरफ से फासिस्ट सरकार स्थापित हो गई। इधर महायुद्ध निकट आता जा रहा था। मुसोलिनी ने स्पष्ट कहा था कि समझौता संभव नहीं, न वे या हम। इस युद्ध में इटली जर्मनी की तरह तैयार नहीं था, क्योंकि जर्मनी को बिस्मार्क ने दृढ़ आर्थिक तंत्र दिया था जबकि इटली अंदर से जर्जर था। आरंभिक सफलताओं के बाद इटली लड़खड़ाने लगा और जब मित्र राष्ट्रों ने सिलसी पर हमला कर दिया तो मुसोलिनी अपनी पार्टी और सरकार से अपदस्थ कर दिया गया। हिटलर की कोशिशें भी नाकामयाब रहीं और मुसोलिनी को पकड़कर गोली मार दी गई। मूल्यांकन। फासिज्म पूंजीवाद का भ्रष्टतम रूप है, लेकिन वह मुखौटे रंगीन लगाता है। मुसोलिनी कहता था, फासिज्म का अर्थ है जीवन को गंभीरता पूर्वक लेना। फासिज्म मीन्स टेकिंग लाइफ सीरियसली। मुसोलिनी ने सोचा था कि इंग्लैंड और फ्रांस लड़कर कमजोर हो जाएंगे तब वह हमला करेगा। इस प्रकार जून 1940 में आक्रमण की घोषणा की। आर्थिक रूप से जर्जर और राजनीतिक रूप से अस्थिर इटली में फासिज्म साम्यवाद के विकल्प के रूप में विकसित हुआ। मध्यम वर्ग के अधिनायकत्व को सर्वहारा के अधिनायकत्व के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ वास्तव में एक व्यक्ति की सत्ता के पीछे सारी प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी ताकतें थीं। फासिज्म के मूल तत्व उत्कट और उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, एकतंत्र, नक्सलवाद और रूमानी दृष्टिकोण होते थे। थके हारे घोड़े को चाबुक मारकर जिस तरह कुछ दौड़ाया जा सकता है, उसी प्रकार फासिज्म देश की अर्थव्यवस्था को कुछ दिनों के लिए गतिमान कर देता है। युद्ध की आवश्यकताएं रोजगार पैदा कर देती हैं। कठोर अनुशासन और आतंक के कारण कानूनों का पालन होता है। लगता है कि देश में अनुशासन और ऊर्जा का संचार हो गया है। वास्तव में फासिज्म में एक रोग ही है निदान नहीं। मुसोलिनी ने इटली के असंतोष और हीन भावना का प्रयोग किया था। दुनिया के विकास की दौड़ में पिछड़ा इटली पूंजीपति अतिरिक्त संरक्षण चाहता था जो फासिज्म में उपलब्ध था। इसका खूब लाभ उठाया गया, लेकिन अर्थतंत्र वास्तविकताओं पर आधारित नहीं था और समाज की मूल आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं करता था, इसलिए उसका अस्थायी होना असंभव था। फासिज्म का दोतरफा विरोध सुनिश्चित था। समाजवाद तो इसका मूल विरोधी था। पश्चिमी देश ही आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इतनी आक्रामक राष्ट्रवादिता के विरोधी बनने को मजबूर हैं। जिस प्रकार फासिज्म देशकाल की उपज था, उसी प्रकार उसका भी पतन स्थितियों के विकास के कारण अवश्यंभावी था। इस प्रकार फासिज्म का यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।